फंक्शन शुरू होने में अभी कुछ वक्त था। सिटिंग प्लान के हिसाब से स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे और फैमिली भी अपनी अपनी सीट लेती जा रही थी। फलक सुमित के साथ वहां आ चुकी थी। अक्षय आहाना और राशि से दोनों मिल भी चुके थे और उन्हें अन्वय अंतरा का इंतजार था। वे लोग आपस में कुछ बात कर ही रहे थे कि सामने से अंतरा और अभिजीत जी आते नजर आए और उनके साथ रूपाली जी आ रही थीं। अक्षय और आहाना दोनों उन्हें सालों बाद अपने सामने देखकर स्तब्ध रह गए। पहले से काफी कमजोर लग रही थीं वो, शरीर गिर गया था। चेहरे पर अब वो पहले वाला गुरूर और सख्ती नहीं थी, काफी बदली बदली लग रही थीं वो। अक्षय की निगाहें उन्हीं पर टिकी थीं और वो बहुत ही ध्यान से उनमें आए बदलावों को नोटिस कर रहा था, जबकि आहाना उनसे रुख फेर कर खड़ी हो गई थी। सालों बीत गए थे, पर जो जख्म उन्होंने अपने क्रूर व्यवहार और कड़वे तीखे शब्दों से उसे दिए थे वो आज भी ताज़ा थे। वो नाराज़गी जिसे कभी उसने ठीक से जाहिर तक नहीं किया था, वो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब हालात ऐसे थे कि वो उन्हें देखना तक नहीं चाहती थी, उनकी परछाई भी अपनी ज़िंदगी पर नहीं पड़ने देना चाहती थी। शायद डरती थी कि ये जो खुशियाँ उसे मिली हैं वो छीन लेंगी। अंतरा का चेहरा भावहीन था। माफ़ी तो उसने भी उन्हें नहीं दी थी, नाराज़ तो वो भी थी उनसे, पसंद वो अब भी नहीं करती थी उन्हें, पर अन्वय की माँ थी वो और वो बहू होने का फ़र्ज निभाती आ रही थी। फलक के रुख पर चिंता और नाराज़गी के भाव उभर आए थे। वो सब लोग इनके पास आए तो अंतरा सबसे मिली। सुमित ने अपने सास ससुर के पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया, जिसमें फलक ने भी बेमन से उसका साथ दिया। उनके पास आते ही अक्षय ने भी अपनी निगाहें फेर ली थीं। अक्षय और आहाना दोनों ने अभिजीत जी के पैर छुए और फॉर्मैलिटी निभाते हुए रूपाली जी के भी पैर छू लिए, पर इससे पहले कि वो उनके सर पर हाथ रखती दोनों पीछे हट गए थे। रूपाली जी की भावहीन नजरें अक्षय पर गईं, जो आहाना की हथेली थामे साइड हो चुका था। माहौल एकदम से तनावपूर्ण बन गया था। तभी अचानक तीनों बच्चे चिल्लाते हुए दौड़ते हुए उनके पास पहुँच गए। मम्मा पापा, आदि और अद्दू पुकारते हुए दौड़कर आकर अक्षय और आहाना के पैरों से लिपट गए। दोनों बच्चे अपने मम्मी पापा को देखकर खुशी से चहक उठे थे। अक्षय ने अपनी राजकुमारी को अपनी बाहों में उठाते हुए उसके चेहरे को चूम लिया। हमारी बेटी तो इस प्रिंसेस चेस में बिल्कुल पापा की प्रिंसेस लग रही है। अपने पापा से अपनी तारीफ सुनकर अद्दू खिलखिलाते हुए उसके गले से लिपट गई। वहीं आहाना को गोद में चढ़कर बैठा आदि भी उसकी ओर लपक गया। मैं पापा? अपने बेटे की आवाज़ सुनकर अक्षय ने सर घुमाकर उसे देखा और उसे भी अपनी बाहों में थामते हुए मुस्कुराकर उसके गाल को चूम लिया। हमारा बेटा भी आज प्रिंस लग रहा है। आदि भी खुशी से चहक उठा। अक्षय और आहाना अपने बच्चों की प्यारी प्यारी बातें सुनने लगे। वहीं रूपाली जी सुनी निगाहों से उन्हें देखने लगी। पिछले बार जब उन्होंने बच्चों को देखा था तब वो साल भर के थे और अब कितने बड़े हो गए थे। इतने क्यूट दिखते थे और इतनी प्यारी प्यारी बातें करते थे। अपने पोते पोती को अपने सीने से लगाकर प्यार करने की ललक सी उठी दिल में, पर अफसोस कि वो ऐसा कर ना सकी। बच्चों से हटकर उनकी नज़र आहाना पर गई, जिसे उन्होंने हमेशा अपने नीचे दबाकर रखा। उसे दुख और तकलीफ पहुंचाती रही, पर आज वक्त ने ऐसी करवट ली कि आहाना के पास हर खुशी मौजूद थी। पति का साथ, दो प्यारे प्यारे बच्चे और अपने अहंकार और लालसा में उन्होंने सब कुछ खो दिया था। उसने जितना दर्द सहा आज उन सबका फल मिल गया था उसे, और उनके हिस्से आई थी उनके गुनाहों की सजा। यहाँ वो मन ही मन आज फिर आहाना और खुद में तुलना कर रही थी। वहीं आदि अपने मम्मी पापा से बातें कर रहा था। अयान पहले अपनी मम्मा और दादू से मिला, फिर नजरें घुमा घुमा कर अन्वय को ढूंढने लगा, पर जब उसे वो कहीं नजर नहीं आया तो अंतरा के पास चला आया। मम्मा पापा नहीं आए? अंतरा जो फलक से कुछ बात करने लगी थी, अयान का सवाल सुनकर उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। वो अयान के सामने बैठ गई और प्यार से उसके गाल को छूते हुए उसे समझाने लगी। बेटा, पापा को जरूरी काम से जाना पड़ा इसलिए वो हमारे साथ नहीं आए हैं, पर कुछ देर में आ जाएंगे। अंतरा ने कोशिश तो की थी, फिर भी अयान उदास हो गया था। उसे मायूस देखकर आदि और अद्दू दोनों अक्षय को देखने लगे। अक्षय मुस्कुराया, फिर उन्हें आहाना के पास खड़ा करके खुद अयान के पास चला आया और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। आयु, आपके पापा जरूरी काम में फंस गए हैं इसलिए अभी यहाँ नहीं आ सके, पर कुछ देर में वो आ जाएंगे। आप उदास क्यों हो रहे हैं? देखिए, आपके बड़े पापा आए हैं और आपके लिए एक गिफ्ट भी लाए हैं जो आपको आपकी परफॉर्मेंस के बाद मिलेगा, पर उसके लिए आपको हमसे प्रॉमिस करना होगा कि आप बिल्कुल भी सैड नहीं होंगे और अच्छी सी परफॉर्मेंस देंगे। अक्षय की बात सुनकर अयान झट से हामी भरते हुए मुस्कुरा दिया। अक्षय ने प्यार से उसके सर को चूम लिया। इतने में बच्चों की टीचर्स उन्हें बुलाने आ गई थीं। सब उनके साथ चले गए। यहाँ भी सब बैठ गए। शुरुआती स्पीच के बाद कुछ परफॉर्मेंसेस हुईं, उसके बाद बच्चों की बारी आई। तब तक अन्वय भी वहाँ पहुँच गया था। अपने जैसे ही प्यारा सा गाना चुना था बच्चों ने। देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखें ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी। खुल के सोचें आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 चलो, नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना। सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए हमें। इस प्यारे से गाने पर उन स्वीट स्वीट से बच्चों ने मस्ती भरी परफॉर्मेंस दी। कई बार वो स्टेप भूल जाते, एक दूसरे का साथ देते, साथ में झूमते हुए खिलखिला उठते। कुल मिलाकर बड़ी ही प्यारी और मजेदार परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, जिसमें उन मासूम नन्हे मुन्हे बच्चों की मेहनत छलक रही थी। अपनी परफॉर्मेंस देकर सब बच्चे दौड़कर अपने मम्मी पापा के पास चले आए। जितनी उनकी तारीफ हुई उतने ही वो खुशी से खिल उठे। अन्वय के आने से अयान भी बहुत खुश था। अक्षय ने सब बच्चों को चॉकलेट दी, जिससे वो और ज्यादा खुश हो गए। ये एक तरीका था उनकी मेहनत को सराहने और उन्हें बढ़ावा देने का। रात का वक्त था, सहगल निवास में गहरा सन्नाटा पसरा था। अंतरा, अन्वय, अयान के साथ सो रहे थे। घर के मंदिर में हल्की रोशनी फैली हुई थी। उसके मध्यम प्रकाश में एक साया वहां नजर आ रहा था, जो किसी इंसान के वहां होने की पुष्टि कर रहा था। इस वक्त मंदिर में रूपाली जी शांत मुद्रा में बैठी थीं, किन्हीं ख्यालों में खोई थीं। सामने भगवान की मूर्ति थी, पर मन किसी और ही दुनिया में विचरण को गया था। अचानक ही रात के उस सन्नाटे में किसी की बुलंद पर धीमी आवाज गूंजी। ये ढोंग करना आप बंद कर दीजिए रूपाली जी। आवाज कानों में पड़ते ही रूपाली जी चौंकते हुए अपने ख्यालों से बाहर आईं। आवाज की दिशा में सर घुमाया तो नजर अभिजीत जी पर पड़ी, जिनके चेहरे पर हिकारत व घृणा के साथ आक्रोश व दुख, अफसोस के भी भाव झलक रहे थे। इन बीते सालों में पहली बार अभिजीत जी की खामोशी टूटी थी और उन्होंने रूपाली जी से कुछ कहा था। रूपाली जी अविश्वास भरी नजरों से एकटक उन्हें देखने लगी। अभिजीत जी धीमे कदमों से चलते हुए उनके सामने आकर खड़े हो गए। बंद कर दीजिए ये ढोंग, क्योंकि ये सब करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा। जितने पाप आपने किए हैं, अपने ही सगे बच्चों की जिंदगी में जिस तरह जहर खोला है, अपनी बहुओं पर अत्याचार किए हैं और इस घर की बड़ी बहू का पग पग पर अपमान किया है, उनके साथ क्रूरता निर्दयता की सभी हदें पार की हैं। आप अब अपनी शेष सारी जिंदगी भी अगर इनके चरणों में बैठी रहीं, तब भी आपके उन पापों से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। अपने अहम और सत्ता के लालच में जो गुनाह आपने किए हैं, जितना आपने उस मासूम सीधी साधी बच्ची को दुख दिया है, उनका ना कोई प्रायश्चित है और ना ही माफी।
हमने आपको शुरुआत में ही आगाह किया था कि मत कीजिए ये सब। भगवान ने आशीर्वाद स्वरूप इतनी अच्छी और नेक बहू दी है, उनकी कदर कीजिए। पर आप हर कदम पर उनका अपमान करती रहीं, उनकी बेकदरी करती रहीं, अपने सास होने का रौब उन पर जमाती रहीं, अपने शब्दों से उन्हें तकलीफ पहुंचाती, हर गलत बात का जिम्मेदार उन्हें ठहराकर अपने अहम को संतुष्ट करती रहीं। उस मासूम सीधी साधी बच्ची की शराफत का फायदा उठाकर हमेशा उनके लिए मुश्किलें बढ़ाती रहीं। और इतना ही बहुत नहीं था कि आपने अपने बेटे और बहू के रिश्ते तक को खराब करने की कोशिश की। अपनी लापरवाही के कारण उनसे उनका बच्चा छीन लिया और उनका दुख दर्द समझने के बजाय उन्हें ही दोषी ठहराकर ताने सुनाती रहीं। आप अपने अहंकार और लालच में इस कदर अंधी हो गईं कि आपको ये तक नजर नहीं आया कि आपकी हरकतें इस परिवार को बिखेर देंगी। आहाना बहू से आपकी बेवजह की नफरत इतनी बढ़ गई कि आपने ये तक नहीं देखा कि उनसे आपके बेटे की खुशियां जुड़ी हैं और उनका हर दर्द अक्षय को भी बराबर तकलीफ पहुंचाता है। सब कुछ रास करने की अपनी लालसा में आपने इस घर को टुकड़ों में बांट दिया और उसका दोष भी उस बेचारी बच्ची पर डाल दिया जो पहले दिन से आपके सब अत्याचार चुपचाप सहती रही। आप हर बार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करती रहीं और देखिए आज आप उनसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहीं। आप उनसे उनके पति को छीनने में लगी रहीं और देखिए आज आपके पास ना तो पति का प्यार है और ना ही बच्चों का साथ। आज सबके होते हुए भी बिल्कुल अकेली हैं आप। कहने को ये घर आपका है, पर घर परिवार से बनता है। ईंटों का बना मकान घर नहीं कहलाता और आपने अपने परिवार को अपने हाथों खुद से दूर किया है। आपके पति के मन में आपके लिए प्रेम क्या, सम्मान और सहानुभूति तक नहीं। आपके अपने बच्चे आपको देखना नहीं चाहते, आपसे बात नहीं करते। आपकी बहुओं के मन में अब आपके लिए जरा सी इज्जत नहीं बची। और आहाना बहू के पास आज किसी चीज़, किसी रिश्ते की कमी नहीं। वो सबसे दूर होकर भी सबके दिल में रहती है, अपने पति के घर और दिल पर राज करती है। उनका पति उनसे प्रेम भी करता है और उनका सम्मान भी करता है। उनके बच्चे उनके पास हैं और उनसे उनका रिश्ता तो आज आप अपनी आँखों से देख कर आई हैं। उन्होंने इतने सालों इस घर में रहकर जो तकलीफ सही, जो तपस्या की, उनका फल मिल गया उन्हें। उनकी नेकी और अच्छे कर्मों का असर है कि अब उनकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। उनका पति, उनका परिवार उनके साथ है।